ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वर्ष 2024 में भारतीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुणाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
वर्ष 2024 में भारत ने खेल जगत में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो चेस हो जहां गुकेश डी विश्व के सबसे कम आयु वाले वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, या पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स हो जहां भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, विभिन्न स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय सफलता हमारे खिलाड़ियों को वैश्विक और एशियन चैंपियनशिप्स में मिली। महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा से देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया। खेल जगत में इन रोमांचक उपलब्धियों और आगे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं युवा मामलों और खेल मंत्रालय में खेलों के विकास के संयुक्त सचिव श्री कुणाल। कुणाल जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
कुणाल जी, भारत की वर्ष 2024 के दौरान खेल जगत में परफॉर्मेंस को आप कैसे आंकते हैं? क्या कुछ रही हमारी प्रमुख उपलब्धियां और आने वाले वर्ष व भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, खेलों की दुनिया में भारत एक चतुर्दिक अपना प्रदर्शन कर रहा है कि चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन ले लीजिए, चाहे ओलंपिक ले लीजिए, पैरालंपिक ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, चेस ले लीजिए, हर जगह भारतीय खिलाड़ी जो कि नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, वो अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। और जैसा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी युवा शक्ति ग्रो कर रही है, उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि उनको हम एक सही दिशा दें, इनको खेलों के लिए हम एक बहुत ही सशक्त माध्यम हम बनाएं कि जिसमें रेगुलर इवेंट्स होते रहें। जैसे खेलो इंडिया का आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लीग होती है, उनकी यूथ गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स होते हैं, पैरा गेम्स होते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपना नेशनल गेम्स कराता है। तो इस तरह से खेलों का एक वातावरण जो बन रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की काफी सोच और प्रेरणा रही है, उसे खेलों के लिए एक युवाओं में जोश है और हमारी एक जो एनर्जी है, ऊर्जा है और कुछ कर गुजरने की जो हमारी चाहत है, वो विश्व पटल पे अपना रंग छोड़ रही है।
आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया, इस पहल ने देश में खेलों के विकास, एक माइंडसेट स्पोर्ट्स की तरफ पॉजिटिव करने की ओर और खेलों में हमारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, जो खेलो इंडिया एथलीट्स जिनको कहते हैं, उनका क्या योगदान रहा, किस तरह से बढ़ावा दिया है इस खेलो इंडिया मूवमेंट ने, क्या इसे आप एक सफल प्रोजेक्ट कहेंगे?
खेलो इंडिया ने एक पूरे भारत में एक जो चेतना में खेलों के लेकर के जो एक विचारधारा थी, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया है और खेलों के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या फिर खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो गई, या डोर स्टेप पे जो खेलो इंडिया सेंटर्स हो गए, एकेडमीज हो गए, डेडिकेटेड ट्रेनिंग हो गई, इसको लेकर के एक सामूहिक एक 360 डिग्री के तहत एक प्रयास किया गया है। मैं कुछ छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा। अभी तक हम खेलो इंडिया के अलग अलग एडिशंस में कुल मिलाकर 15 खेलो इंडिया गेम्स हम कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें कुल मिलाकर 28,000 एथलीटों ने भाग लिया है। आज के दिन में देश के 750 जिलों में करीब 1,400 खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पे उस क्षेत्र के जो पास्ट चैंपियन एथलीट हैं, जो कि पुराने चैंपियन एथलीट हैं, उनको वहां पे एज ए मेंटर उनको लगाया गया है। और इसी के तहत जो खेलो इंडिया जो एथलीट्स लाते हैं, साल में 3,000 को हम खेलो इंडिया एथलीट का दर्जा देते हैं, जिसको कि डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स पे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, उनकी रहने इक्विपमेंट इंश्योरेंस हर तरह की व्यवस्था की जाती है, और साथ ही साथ उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी दिया जाता है, और उनका एक सामूहिक चतुर्दिक विकास होता है उन सेंटर्स पे। और वैसे खेलो इंडिया एथलीट्स ने इस बार 6 मेडल पैरालंपिक्स में लिए हैं और 4 मेडल ओलंपिक्स में लिए हैं।
जी बिल्कुल। और अगर हम कहें, एक तरह से खेलो इंडिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को भारत में, जिसमें प्रतिभा है लेकिन फाइनेंशियली शायद उतना दमखम नहीं है कि वो उतनी इक्विपमेंट या जो भी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा उठा सकें, उस प्रतिभा को उभारने के लिए भी जो खेलो इंडिया है वो अपना उद्देश्य पूरा कर रही है?
बिल्कुल। ये जो डेमोक्रेटाइज करने का जो माध्यम है खेलो इंडिया, आप अगर जिले पे आपके अंदर प्रतिभा है तो वहाँ पे ग्रामीण जिले लेवल पे हमारे जो पास्ट चैंपियन एथलीट द्वारा संचालित खेलो इंडिया सेंटर्स है, हर स्टेट के कैपिटल में जो उनके जो बेस्ट इंफ्रा है उसको हमने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा दिया है। स्पोर्ट्स में कोचेज होते थे पहले, फोकस करते थे, आज के दिन स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा महत्व है। आपका पूरा बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया, आपका गेट एनालिसिस हो गया, तो इस तरह के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, स्पोर्ट्स साइंसेज हो गए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई, आपके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गए, इस पे खेलो इंडिया ने एक विशेष बल दिया है। तो उसी तरह से जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एथलीट हैं, अगर और थोड़े बड़ी प्रतिभा है उनका स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स में जा सकते हैं। और जो खेलो इंडिया गेम होती है इसका पूरा स्टैंडर्ड कंडक्ट किया जाता है, कि जो इसका TSR सिस्टम बोलते हैं, टाइम स्कोरिंग रिजल्ट सिस्टम, पूरा ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का रहता है। हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे इन सारे एथलीट्स के डेटा रहते हैं, उससे हम इनका टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको फिर खेलो इंडिया एथलीट डेजिग्नेट करके उनको उनके मन मुताबिक, ये भी हम नहीं कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेंटर में जाइए, आपका चयन अगर खेलो इंडिया एथलीट के तौर पे हो गया है, आपके डिसिप्लिन के जो जो एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं कि जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं, वहाँ कहीं भी जा सकते हैं और वहां पे डायरेक्ट बात करके उनको हम एडमिशन करवाते हैं। और साथ ही साथ हम आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी देते हैं खिलाड़ियों को। तो आज के दिन में कोई भी खिलाड़ी जिसमें प्रतिभा है उसके लिए कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हुए हैं और उनकी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और उनको स्पेस देना पार्टिसिपेट करने के लिए सभी चीजों की पर्याप्त व्यवस्था हो रखी है।
जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं या इवन नेशनल लेवल एथलीट्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी ना हो, ये हमारी बढ़ती सफलता के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इस संदर्भ में आप हमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, क्या उद्देश्य है इसका?
देखिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसा नाम होता है कि पोडियम फिनिश करने की जिनमें जिनमें क्षमता है ओलंपिक्स के खेलों में, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। हमारे यहाँ एक पूरे एक्सपर्ट्स की टीम है और इसको पूरे इस स्कीम को मैनेज करने के लिए जो हमारे जो रिनोन्ड खिलाड़ी हैं उनका एक मिशन ओलंपिक कमेटी बनाई हुई MOC, वो सारे भारत के खिलाड़ियों का एक बायोडाटा देखती है, उनका परफॉर्मेंस देखती है और उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है टॉप्स खिलाड़ी के रूप में। और एक बार टॉप्स खिलाड़ी में जिसका चयन हो जाता है उनके लिए सरकार कहिए मुंह मांगी, आपको कहाँ ट्रेनिंग करना है, इंडिया में करना है, बाहर करना है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, कोई पर्सनल कोच चाहिए, कोई वर्ल्ड रिनॉन कोच चाहिए जो अवेलेबल है, हम सबकी व्यवस्था करते हैं, इंडिया में ट्रेनिंग, बाहर में ट्रेनिंग, जहां आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए हम पार्टिसिपेशन करने के लिए सपोर्ट देते हैं, उनको मन माफी हम सारी की सारी सुविधाएं देते हैं और साथ ही साथ हम उनका एक सब्सटेंशियल आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी देते हैं। तो और इसमें साथ ही साथ दो कैटेगरी होता है, एक जो इमीडिएट ओलंपिक गेम के लिए और एक आने वाले ओलंपिक गेम के लिए, जैसे अभी LA में 2028 होने वाला है, एक उसकी जो कोर ग्रुप है और उसका जो आने वाला है जो 32 वाला है उसके लिए डेवलपमेंटल ग्रुप होता है। इस तरह से करके हम एक होलिस्टिक इसका हम एक फ्रेमवर्क लेते हैं और जो हमारे जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं भारत के वही इनका ट्रेनिंग, सिलेक्शन और इवन वीडिंग आउट भी होता है। अगर कोई खिलाड़ी टॉप्स में आ जाए और अगर परफॉर्मेंस उसका मानकों के द्वारा नहीं हो रहा है, यही MOC उनका फिर वीडिंग आउट भी करती है। तो एक कंटिन्यूस हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें कि उनसे हम रेगुलर डायलॉग भी रखते हैं और उनका हम प्रॉपर करियर प्लानिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और हर चीज हम उनका इंश्योर करते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक्स का वर्णन किया, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक्स से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है।
आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट।
बस्तर ओलंपिक की शुरुआत इस साल 6 नवंबर को हुई थी और इसका समापन 15 दिसंबर को हुआ। इस ओलंपिक के तहत 3 स्तरों पर मुकाबले हुए। सबसे पहले जोन या विकासखंड स्तर पर 6 नवंबर से 15 नवंबर तक, फिर जिला स्तर पर 20 से 25 नवंबर तक और सबसे अंत में संभाग स्तर पर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मुकाबले हुए। इस ओलंपिक में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के करीब 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। संभाग स्तर पर हुई प्रतियोगिता में लगभग 3,000 खिलाड़ी शामिल हुए, इनमें करीब 1,200 महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं। बस्तर ओलंपिक में 18 ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी भाग लिया जो नक्सली हिंसा की वजह से दिव्यांग हो गए थे। इसके अलावा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए 318 पूर्व माओवादियों ने भी बस्तर ओलंपिक में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में कुल 11 खेल जैसे फुटबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, रस्साकसी को शामिल किया गया। बस्तर ओलंपिक ने इस क्षेत्र के युवाओं, खासकर आदिवासी युवाओं में ऊर्जा, उमंग और उम्मीद की नई किरण का संचार किया है। कभी माओवादी हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अब गोलियों की आवाज नहीं बल्कि खेलों का शोर सुनाई दे रहा है।
कुणाल जी, बस्तर ओलंपिक्स के आयोजन पर सभी भारतवासियों को गर्व होगा। खेलों में समावेशी भागीदारी और बिना किसी भेदभाव के देश के हर हिस्से में समान अवसर प्रदान करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
ये जो बस्तर ओलंपिक है अपने आप में स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक ऐसा क्षेत्र जो कि सुदूरवर्ती है, जो कि नक्सल प्रभावित रहा है, और वहां पे स्पोर्ट्स कैसे एकजुट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, जिसमें कि एबल बॉडी डिसेबल्स और एक्स नक्सल सारे के सारे एक खेलों की जो एक खूबसूरती होती है कि सबको एक समान लाना, भाईचारा बढ़ाना, मिलजुल बढ़ाना और उनसे चैंपियन भी निकालना, इस पूरी भावना को लेकर के चल रहा है, जिसमें कि बहुत ही इंकरेजिंग फिगर्स है कि 1.65 लाख पार्टिसिपेंट्स थे, सारे के सारे उसमें नक्सल अफेक्टेड एरिया के लोग थे और 11 डिसिप्लिन में हुआ था। और उम्मीद ही है कि इससे जो ऊर्जा निकलेगी, जो खिलाड़ी निकलेंगे, जिनको प्रतिभा मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रतिभा दिखाने का, तो इनसे हमारे जो फ्यूचर के चैंपियन है, आप समझिए कि उन एरिया में जितने जो युवा हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो ट्रेडिशनल गेम में वो काफी अपना उनका एक्सपर्टीज रहता है, बस जरूरत होती है उनको प्रतिभा निखारने की, और ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रतिभा की पहचान अगर हो जाए समय पे, तो प्रतिभा निखारने के लिए हमारा पूरा विभाग बैठा हुआ है, पूरी सरकार बैठी है।
बस्तर ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट ने अपने अनुभव के बारे में हमें बताया।
सर, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ग्रामीण इलाका जो नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उधर से निकलकर मैं यहाँ आया और मेरा नाम खेल के माध्यम से जो वहाँ तक मेरा जो मोदी जी के पास पहुँच गया, और उनके मोदी जी हमारा नाम ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को बहुत बधाई मिल रहा है।
कुणाल जी, महिलाएं निरंतर एक के बाद एक खेलों में आगे बढ़ रही हैं। भारत में खेलों के विकास के लिए ये एक और उपलब्धि है, इसके लिए भी विशेष बल दिया जा रहा है सरकारी तंत्र द्वारा।
हमने महिलाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और खासकर उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए खेलो इंडिया के तहत एक अस्मिता लीग अलग से स्टार्ट की है, जिसमें एक बहुत ही इंकरेजिंग फिगर है कि करीब 20 डिसिप्लिन में हमने अस्मिता लीग स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक 83,700 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब समझिए कि जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी खासकर, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता था, अभी आज के दिन में पिछले 1-1.5 सालों में 83,000 खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। और अगर इस तरह का प्रतिभा दिखाने का मौका हम साल साल देते रहते हैं, तो जो वो समाज में रोल मॉडल का काम करेंगे, जो आत्मविश्वास उसमें आएगा, उसमें मेडल ही नहीं, वो समाज के लिए भी एक बहुत ही बेहतर नागरिक और एक नई दिशा दे सकती है। तो खेलो इंडिया के जो वुमन वर्टिकल्स का जो अपना है, हमारा अस्मिता लीग का प्रयास है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट है।
कुणाल जी, बहुमुखी प्रयासों से जो स्पोर्ट्स के लिए सम्मान बढ़ रहा है देश में, उससे आपको लगता है कि उनको हर तरफ से फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और ये एक वायबल प्रोफेशन भी हो सकता है, और इससे जो मेरिटोरियस है वो अपना पूरा 100% फोकस अपनी स्पोर्ट्स को दे पाएंगे भारत में?
जी डेफिनेटली, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि खेलों को समाज की मुख्यधारा में लाने का, बच्चों में खेलों के लिए एक अलग स्थान देने का, जो फिटनेस को देख के बोलते हैं कि भाई फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, आप इन चीजों की महत्ता समझिए कि जब अगर बच्चे बचपन से खेल रहे हैं, उनके घर में भी एक माहौल बन रहा है, उनके जीवन में जो खेल है उससे मेडल तो आता ही आता, साथ ही अब एक जीवन शैली में एक आमूलचूल परिवर्तन लाता है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, इनसे पूरा जो खेलों का माहौल बन रहा है, ये भारत को नो डाउट एक विश्व शक्ति बना रहा है, बट साथ ही साथ हमारा एक फिटनेस बढ़ रहा है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो रहा है।
आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवा को स्पोर्ट्स के संदर्भ में आने वाले वर्ष 2025 के लिए क्या संभावनाएं हैं और अब क्या संदेश रहेगा आपका मुख्य?
हमारा तो संदेश यही रहेगा, खेलो इंडिया, फिट रहो इंडिया, और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, आप में प्रतिभा है, आप खेलिए, सरकार आपके साथ है, खेलो इंडिया स्कीम आपके लिए पूरी तरह तैयार है, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि खेलों के लिए कोई कमी रहेगी, अगर आप में प्रतिभा है, हम हैं, हमारा खेलो जो हमारा कीर्ति स्कीम है, इसके अंदर हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, और अगर आपका प्रूवन टैलेंट है उसके लिए खेलो इंडिया एथलीट का जो सिस्टम है वो भी है, हमारे खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं, आपको विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस आप खेलते जाइए, खुद का भी नाम रोशन कीजिए, परिवार का भी कीजिए और देश का भी कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, इस प्रेरणात्मक और समग्र जानकारी के लिए।
अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2024 में भारतीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुणाल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।